नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स समिट के वेलकम किट में शामिल हुआ बिहार का सत्तू और मखाना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के उत्पादों को मिल रही है वैश्विक पहचान। सम्राट चौधरी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर 20 नवंबर को राज्य के 30,000 भूमिहीन परिवारों को दिया जाएगा पास गीत पर्चा। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और प्रदेश में कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का दायरा बढ़ा, 15 जिलों की 47 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट के वेलकम किट में बिहार के सत्तू और मखाना को शामिल किया गया है, जो बिहार के स्वाद, परंपरा और उद्यमिता की पहचान है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकल टू ग्लोबल संकल्प के माध्यम से बिहार के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार की नई पहचान के रूप में यहाँ का स्वाद अब दुनिया के सामने पहुँच रहा है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 20 नवंबर को सम्राट चौधरी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर 30,000 भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा दिया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने ये जानकारी दी।
मुख्यमंत्री जी भी इतना दरिया दिल है, मैं तो सम्राट चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। छोटे छोटे काम को भी वो इतना गंभीरता से और शालीनता से लेते हैं कि उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजस्व मंत्री जी, जो हमारा 20 नवंबर को सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है, एक डेढ़ महीने के बाद फिर से 30,000 और भूमिहीन को आप बासगीत पर्चा देने का काम करें, तो एकदम बहुत बड़ी बात फैसला हो गया। एक दो दिन के अंदर हम इस फैसला की घोषणा भी अखबार के माध्यम से करने जा रहे हैं।
उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश सम्मेलन में राज्य में निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में हुई चर्चाओं से राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।
आज जो AIM कांग्रेस कॉन्क्लेव इंडस्ट्रीज का दुबई में आयोजित हुआ था, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उसको लीड कर रहा था, मेरे साथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सचिव महोदय और डायरेक्टर भी थे, उनके साथ एक टीम थी। बहुत ही सकारात्मक चर्चाएं अनेकों ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हुई है। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से हम लोग UAE के साथ एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल बेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे।
सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने वर्ष 2024 में प्रतिकूल मौसम के कारण खराब हुई फसल के लिए किसानों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि सहायता राशि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत दी गई है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 के मौसम के लिए जो नुकसान हुआ है वो लगभग 1,17,708 लाभुक किसानों को ये लाभ मिला है। लगभग 1,04,46,00,000 की राशि का भुगतान हम लोगों ने किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि वैशाली के लालगंज में निर्माणाधीन पुल के बीम लॉन्चर गिरने की घटना की जांच कराई जाएगी। भागलपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से आज पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में गरीब चौपाल यात्रा आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यात्रा के माध्यम से गरीबों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उसके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू है और आगे भी जारी रहेगी। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कही।
आरक्षण सबको समान मिला तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग पीछे बढ़ गए? उन पर विचार करके कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पिछड़े हुए लोग फिर आगे आके उनको भी लाभ मिले, समानुपाती हो, सबको रेशनलाइज हो, सबको बराबर मिले, इसकी हम बात।
विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए जरूरी सुविधाओं की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मोबाइल ऐप आधारित सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके जरिए यात्रा और दैनिक भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अतिथि निवास जैसी सुविधाओं के लिए आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल अदालतों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने वाहन मालिकों से लंबित चालानों के निष्पादन के लिए लोक अदालत आने की अपील की है।
आगामी 12/9/26 को राष्ट्रीय लोक अदालत सभी जिलों में लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग के 90 दिन से पूर्व के चालान हैं, उनकी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में होगी और 12 तारीख को उन चालानों पर फैसला आएगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस योजना का आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और अपने ई चालान से मुक्ति पाने का काम करें।
प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर आज पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सभी जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों के 87 प्रखंडों में 47 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1221 सामुदायिक रसोई केंद्र और 15 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 कंपनियों की तैनाती की गई है। इधर जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, बागमती और घाघरा समेत कई नदियां विभिन्न स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि अधिकांश स्थानों पर जलस्तर में गिरावट का रुख है। गंगा नदी भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से 1.66 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से 1.78 मीटर और कोसी का जलस्तर कुर्सेला में 1.49 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। पुनपुन का जलस्तर भी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1.41 मीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर बेनीबाद और घाघरा का जलस्तर दरौली में बढ़ रहा है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। औरंगाबाद के ओबड़ा में सबसे अधिक 123.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
दिनांक 12 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
गया जी में 25 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष मेले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि इस बार मेले में सुरक्षा को लेकर तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए 25 रुपए में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं के आवासन के लिए गांधी मैदान में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है।
इस वर्ष पितृपक्ष के लिए 21 कोषांगों का गठन किया गया है। लगभग 70,000 लोगों की आवासन क्षमता हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें गांधी मैदान में 2500 बेड की टेंट सिटी भी तैयार की जा रही है। साफ सफाई के लिए 5 जोन और 54 सेक्टर में पूरे नगर क्षेत्र को विभाजित किया गया है। प्रकाश व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में हम लोग स्ट्रीट लाइट, हाई मास लाइट, मिनी हाई मास लाइट, रोप लाइट के माध्यम से कार्य करा रहे हैं। जलापूर्ति के लिए 280 चापाकल, 54 प्याऊ और 890 नल, 22 वाटर टैंकर और 2 वाटर एटीएम मेला क्षेत्र में लगातार नियुक्त रहेंगे। स्वच्छता के लिए 364 शौचालय, 579 प्री फैब्रिकेटेड जो टेम्पररी शौचालय होते हैं और 134 स्नानागार और 74 चेंजिंग रूम तैयार किए जा रहे हैं।
विशेष निगरानी इकाई की टीम ने आज लघु जल संसाधन विभाग के छपरा अंचल के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के पटना, मसौढ़ी, गया, छपरा और मुंबई में 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधीक्षण अभियंता पर आय से 100% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बैंक कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आज हड़ताल किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हुई इस हड़ताल में राज्य भर में व्यापक असर देखने को मिला। बैंकिंग सेवाओं के बाधित होने के चलते हजारों करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबगंज में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक भाजपा के नेता बताए जाते हैं। कटिहार जिले के कुरसेला प्रखंड स्थित पूर्वी मुरादपुर में डूबने की घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक डंपर ट्रक से 3,000 लीटर से अधिक शराब जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी इलाकों और जंगलों में एसएसपी और पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। वैशाली जिले के भगवानपुर से पुलिस ने 72 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के फतेहपुर में चोरी के एक मामले की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। शेखपुरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई। पूर्णिया जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बगहा की एक अदालत ने चर्चित विजय सहनी हत्याकांड मामले में दोषी अशोक यादव को उम्र कैद और 1,00,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पहले ही 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स समिट के वेलकम किट में शामिल हुआ बिहार का सत्तू और मखाना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के उत्पादों को मिल रही है वैश्विक पहचान। सम्राट चौधरी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर 20 नवंबर को राज्य के 30,000 भूमिहीन परिवारों को दिया जाएगा बास गीत पर्चा। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और प्रदेश में कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का दायरा बढ़ा, 15 जिलों की 47 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।